शाला रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम जी।
हाँ जी
सलाम जी। शाला बीबी, आप डिप्टी स्पीकर भी हैं सिंध असेंबली की। आज का जो वाकया हुआ, पहले तो मैं आपसे एक्सप्रेस न्यूज के मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज की जानिब से मैं आपसे यानी आई वांट यू टू नो दैट वी शेयर द ग्रीफ एंड वी आर विद यू ऑल। आप इसमें हमें क्या बता सकती हैं?
मैं खुद वहाँ मौजूद थी सुबह से।
अच्छा।
और जब ये धमाका जिस कैंप में हुआ है, ये यंग स्काउट कैंप, यंग बॉयज स्काउट कैंप, और क्योंकि फाका छिकने का वक्त था। हेलो
जी, जी मैं सुन रहा हूँ।
फाका छिकने का वक्त था तो मैं गाड़ी में जाकर बैठ गई थी, जुलूस में आगे नहीं जा कर रही थी। तो मुझे यंग बॉयज स्काउट ने मैसेज करवाया कि आप हमारे कैंप पे नहीं आई। मैंने फाका नहीं की खोला और मैं फंस गई उनके कैंप पे। वहाँ पे हमारे टीवी आर्टिस्ट साजिद हसन भी थे, उनके भाई भी जो थे सज्जाद हसन जो शहीद हो गए, उनकी वाइफ भी थी जो
साजिद हसन के भाई शहीद हुए हैं।
जी जी, उनके भाई भी शहीद हुए हैं, उनकी भाभी भी शहीद हुई है, उनकी बहन भी बहुत जख्मी है, उनके वहाँ के बच्चे भी जख्मी है।
माय गॉड।
और यंग बॉयज स्काउट में जो है वो मोस्टली 12 से 14 साल के और 10 साल के बच्चे थे, जिनमें से तकरीबन 4 शहीद हुए हैं और 5 शहीद हुए हैं। और उसी में ही दाखिल होने की कोशिश की थी, जुलूस में एंटर नहीं हो सका, उस कैंप में एंटर होने की कोशिश की थी। और हम वहां से निकले हैं और हम 3रा मिनट खत्म नहीं हुआ था, मैं गाड़ी में जाके बैठी हूँ और मैंने पानी पिया है और धमाका हो गया। और जो जिस रेंजर को मैंने कहा कि हटना भाई और ये कहकर मैं आगे बढ़ी हूँ, उसी ने आगे बढ़ के उसे रोका है, जुलूस में नहीं घुस सका। ये यंग बॉयज स्काउट का जो कैंप था उसी में वो फट गया। और जाहिर है कि फिर उसके बाद बहुत ज्यादा धुएं के बादल थे। और जो मैं सबसे ज्यादा खराज अकीदत पेश करूंगी वो अजादारान हुसैन को भी पेश करूंगी, रेंजर्स और पुलिस को भी, कि वो वहां से हिले नहीं और उन्होंने अपनी ड्यूटी की पूरी। और अजादारान हुसैन को इसलिए कि उन्होंने वहीं पे ऐलान करना शुरू कर दिया था चीख पुकार के दौरान कि ये जुलूस अपने मुकर्ररा मुकाम तक पहुंचेगा और सिर्फ जगह दे दें कि एम्बुलेंस आ सके। और एम्बुलेंस भी फौरन आई और उनको लेकर गई। और उसके बाद जब हमने मुझे सबने कहा कि आप चली जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है खातून को नहीं जाना चाहिए ऐसे मनाजिर हुए, तो मैं आगे बढ़ी और हमने फिर ये स्ट्रैटेजी बनाई इस रेंजर्स के साथ कि हमें आगे जाके रास्ता क्लियर कराना है ताकि एम्बुलेंसेस गुजर जाएं। तो जब हम आगे निकल आए टापू तो हमने देखा कि कोई 10 मिनट की भी हमने ड्राइव नहीं की थी, सीधी सीधी सड़क पे, कि अचानक राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड से जो है कुछ गिरोह निकलना शुरू हुआ और उन्होंने हम लोग से भी जो है वो बदतमीजी की कोशिश की कि हमारी गाड़ी को रोक सके या रेंजर्स को रोक सके। और उस पर भी हमारी पुलिस और रेंजर्स ने उतर के उनको, उस वक्त ये पोजीशन नहीं थी, सिर्फ लाठियां दिखा दिखा के उन्हें पीछे किया था कि एम्बुलेंस गुजर जाए। तो मैं इस बात पर हैरान थी कि अजादारों को तो मैं पीछे छोड़ के आ रही हूँ जो ये अज्म कर रहे हैं कि जी रास्ता इन्हें जख्मियों को और जो शहीद हो गए हैं ऑब्वियसली उनके लिए सिर्फ एम्बुलेंस आती है, बाकी जुलूस आगे गिरेगा आगे बढ़ेगा। तो ये कौन अनासर थे जो विद इन 5 मिनट जो है वो निकल आए बाहर और उन्होंने घेराव जलाओ जलाने की हरकत शुरू की। ये इंतहाई परेशान कुन था, लेकिन अगर मैं थोड़ी देर और रुक जाती तो मजीद वहां मसला होता। और फिर बाद में आपने खबरें देखी ली तो मैं ये समझती हूँ कि अजादारान हुसैन नहीं थे ये, क्योंकि उनको तो हम पीछे छोड़ आए थे।
ये तो जाहिर बात है, आपकी बात से मुझे लग रहा है कि ये कोई मुल्क दुश्मन अनासिर हैं और ये तो मुसलमान भी नहीं हो सकते ना।
देखिए इस वक्त जो है ना लुकमान साहब, हमारा अलमिया यही है कि हमारी फौज और हम सब लोगों से लड़ रहे हैं, उनका दावा ये था कि वो मुसलमान है, उन्होंने इस्लाम का नाम लेके पूरी दुनिया में इस्लाम को भी बदनाम करने की कोशिश की, और इस वक्त हमारी फौज और हमारे तमाम लोग, हम लोग इस्लाम की सरबुलंदी की भी जंग लड़ रहे हैं कि जी इस्लाम एक अमन पसंद मुल्क है, वो अमन पसंद मजहब है, और ये लोग जो कि हमारे उलमा के, हमारे आर्मी के, हमारे बच्चों के और दुश्मन है, ये मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो हम है कि हम पे धमाका हुआ और हमने किस तरह से आगे जुलूस बढ़ाया, और तमाम
इसमें कोई शक नहीं है। सैयद शाला रजा साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ अतीक मीर साहब शरीक गुफ्तगू हैं, जो सदर हैं अलायंस मार्केट एसोसिएशन। इनके पास तमाम वो तखमीने हैं नुकसान किस किस्म का हुआ, हम इनको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अगर आपको तखमीना देना हो व्यूअर्स को इस प्रोग्राम के तवसत, तो आप क्या बताएंगे कि वो जो ह्यूमन ट्रेजिडी है वो तो एक सेट ऑफ कैटेगरी है, जो दूसरी तबाही हुई उसका तखमीना क्या है?
देखिए यहाँ मकसद तकरीबकारों का हरगिज ये नहीं था कि सिर्फ ह्यूमन ट्रेजिडी तक महदूद रहा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान था, ये 27 दिसंबर का रिप्ले था। बिल्कुल उसी तरह से धमाके के फौरी बाद एक मुनज़्ज़म ग्रोह जो उज़ादारों में शामिल था और बल्कि उज़ादारों के भेस में था, उन्होंने मार्केटों पे हमला कर दिया, और उनके पास आतिशगीर मादे थे, उनके पास पेट्रोल था, उनके पास वो तमाम कुछ था जो किसी इमलाक को तबाह बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद ये कि ये टोटल इतने ये मुनज़्ज़म और इतने मजबूत लोग थे कि इन्होंने हमारी इंतज़ामिया को, हमारी पुलिस को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तौर पे बेबस कर दिया, हमारी एजेंसियां मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गईं, और इसके बावजूद कि 2 से 3 माह कबल ये कहा जा रहा था कि इस साल आशूर के मौके पर बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि कराची में हादसात हों या सानियात हों या दहशतगर्दी हो।
पहले तो मैं आपका असेसमेंट जानना चाहूंगा कि क्या आप अतीक साहब की इस बात से इत्तफाक करते हैं कि इंतहाई मुनज़्ज़म सोचे समझे मंसूबे के तहत इस मौके को इस्तेमाल करते हुए कराची, सिंध और पाकिस्तान की मईशत के ऊपर ये बाकायदा कल हमला किया गया?
आई टोटली एग्री विद मिस्टर अतीक, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान है, और तलत आप भी दहशतगर्दी के हवाले से बहुत अच्छे अच्छे और बड़े बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं, आप उन इलाकों में जा चुके हैं जहां से इनकी जड़ें हैं, जहां वहां के प्रोग्राम मैंने आपके देखे हैं। ये तरीकेकार कराची के लिए अलग से अपनाया गया है एज फार एज दहशतगर्दी इज कंसर्न। इन्होंने देखा कि कराची सिंध में इतना आसानी से पेनिट्रेट नहीं कर सकते। ये वाकया तो हुआ है कल, एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जिसमें 43 जाने जाया हुई हैं, मगर इसका दूसरा इन्होंने जो तरीका निकाला है वो इकोनॉमी को चोट मारनी है, मारने के हवाले से है। ये इकोनॉमी को जो नुकसान इन्होंने पहुंचाया है कराची में, जैसे कि अतीक साहब ने कहा, ये सिर्फ कराची नहीं है, यहां से माल पूरे पाकिस्तान में जाता है, और मैं समझता हूं कम से कम 6 महीने से साल लगेगा वापस आने में, क्योंकि लोग तबाह हो गए हैं, जिनके गोदाम थे, जिनकी दुकानें थी, वो लोग तबाह हो गए हैं, और बहुत बुरा हाल है उधर। तो उस हवाले से इन्होंने ये एक नया ट्रेंड निकाला है जिससे इकोनॉमी को चोट पहुंचाई जाए, और जाहिर है जब इकोनॉमी को चोट तलत पहुंचाई जाएगी तो पूरा मुल्क प्रॉब्लम में आएगा, इकोनॉमी जब प्रॉब्लम में आएगी तो बेरोजगारी।
लेट मी ब्रिंग इन शैला साहब। शैला साहब, आप कराची की रिहायशी हैं और आप सिंध असेंबली एक मोतबर इदारा है उसकी डेप्टी स्पीकर हैं, आपका जरा मैं असेसमेंट जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में कल कराची के अंदर क्या हुआ?
मैं क्योंकि खुद उस जुलूस में सुबह से मौजूद थी, और उसके बाद ये हुआ कि मैं उस कैंप में मौजूद थी जिसमें धमाका हुआ, जिसमें घुसने की कोशिश की, और मैंने सिर्फ उस कैंप को छोड़ा है, गाड़ी में बैठी हूँ और धमाका हो गया, और अल्लाह की मर्जी थी कि उसने हमें महफूज रखा, और वहां पे तो कोई मसला नहीं था, वहां पे तो सिर्फ एम्बुलेंस आ रही थी और ले जा रही थी, लेकिन फायरिंग और पता नहीं कहाँ से जो थे वो एक हंगामे किसी कैफियत में आगे निकली हूँ, तो हम रास्ता बना रहे थे कि एम्बुलेंस निकल जाए, और वहां पे जो है इतने में ग्रुप्स आने शुरू हो गए राइट से और लेफ्ट से, और उनके हाथों में डंडे, हथौड़े और पत्थर, मतलब ये इंतजार था कि ओके इधर जो हो जाए अब ये करना है। तो ये एक कैफियत जो थी,
یہ بڑی عجیب تھی کیونکہ ہم اس کو, اور
سہلا صاحب ان گروپس کی تعداد کتنی تھی؟ دو دو میں تھے, تین تین میں تھے, چھ چھ میں تھے؟
نہیں نہیں, چار چار چھ چھ لوگ تھے اور ان نے رائٹ لیفٹ سے آنا دونوں جگہ سے شروع کیا. اور میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی, تو مطلب ہم تو ادھر تھے جہاں پہ بلاسٹ ہوا ہے 20-22 منٹ کے فاصلے پر, اور اتنی جلدی لوگ کیسے تیار ہو گئے کہ انہوں نے جو ہے یہ دیکھ لیا کہ آدھے لوگ ابھی مر رہے ہیں, ابھی اٹھائے بھی نہیں جا رہے, اور انہوں نے ہنگامہ شروع کر دیا. تو یہاں پہ یہ بات آتی ہے کہ کچھ لوگ مینٹلی پریپیئر تھے کہ اگر کچھ ہو تو انہیں کیا کرنا ہے.
پوائنٹ, اسٹے آن دس پوائنٹ, لیٹ می گو ٹو اتھک صاحب. آپ نے بھی ذکر کیا تھا کہ تمام ایجنسیاں فیل ہو گئیں, پولیس فیل ہوگی, انتظامیہ فیل ہوگی. ذرا میں آپ کی اسسمنٹ جانا چاہوں گا. پہلے تو یہ گروپس جن کا شیلا صاحب ذکر کر رہی ہیں وہ عام تھے, اور میں دوبارہ کہوں گا کہ ہم نے پاکستان میں اس قسم کا جو رد عمل ہے دہشت گردی کے واقعے کے فوراً بعد وہ کہیں نہیں دیکھا. عموماً ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ لوگ گھبراتے ہیں اور بھاگتے ہیں, اور لیکن بعض لوگ جو ہیں جو کثیر تعداد میں ہوتے ہیں وہیں پہ رکتے ہیں اور زخمیوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن یہاں پر تو تباہی کو بڑھانے کا سامان جو ہے مکمل تھا. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ یعنی شاید ان سے آپ نے یہ بات کی ہوگی.
دیکھیے, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ گروپس تھے, منظم گروپس تھے. اور میں پھر کہوں گا کہ یہ 27 دسمبر میں جو بات دیکھنے میں آئی کہ پولیس اور سیکورٹی کے دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کا کام صرف تماشائی بننا رہ گیا تھا, وہ ایک سائڈ پہ ہو گئے تھے. کل بھی یہ کچھ ہوا, ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی انتظامات کیے گئے, کراچی میں تقریباً 30,000 کے قریب پولیس کی نفری ہے, اور کل میرے خیال میں کوئی 80% پولیس تو یہاں موجود تھی, رینجرز کی بڑی تعداد تھی. اب جو کچھ بھی جل رہا ہے, جو کچھ بھی لوٹا جا رہا ہے, کیونکہ جلاتے وقت شٹر اٹھائے گئے اور سامان پہلے لوٹا گیا, یہ سب منظر رینجرز نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, یہ سارا منظر پولیس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو کون تھا جو ان کو مبہوت کر گیا؟ ہمارے اداروں کو کس نے ایسا کر دیا کہ وہ پتھر کیوں ہو گئے؟
لیٹ می گو ٹو وسیم صاحب. وسیم صاحب, اس کا کیا جواب ہے؟ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ کہ مخفی ہاتھ نہیں تھے, لوگ منظم تھے, تیار تھے پہلے سے, اور اس کے بعد لوٹنے کا عمل جو ہے بہت دیر تک جاری رہا اور تمام انتظامیہ مفلوج ہو گئی. یہ تو وہ اشتہار کے بالکل خلاف لگتا ہے جو ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ کراچی کی انتظامیہ کتنی مؤثر ہے.
دیکھیں, طلعت جو ہوا وہاں اور جو گروپس تھے یہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہے, یہ واقعی میں نظر آ رہے تھے وہاں. یہ سیکیورٹی لیپس تو نظر آتا ہے, بالکل نظر آتا ہے. اس قسم کے واقعات کہیں اور ہوتے نہیں ہیں. اگر آپ سندھ میں, یہ دوسرا واقعہ ہے 27 کے بعد, 27 میں بھی اسی قسم کے واقعات ہوئے تھے لوٹ مار کے, اور یہ منظم گروہ ہوتے ہیں. ان کو مزے کی بات یہ ہے کہ گرفتاری بھی نہیں ہوئی ہے کہ ان میں سے کوئی گرفتار ہوتا. اس کو چیک کرنے کی ضرورت تھی, یہاں لیپس نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک یہ اتنے منظم تھے طلعت صاحب کہ انہوں نے فائر بریگیڈ کے ڈرائیورز پہ فائرنگ کی ہے تاکہ وہ وہاں پہنچ نہ سکیں, اس میں سے زخمی بھی ہیں کچھ لوگ. فائر بریگیڈ وہاں پہنچ نہیں سک رہے تھے کیونکہ گلیاں پتلی تھیں اور وہ منظم گروہ ان کو وہاں پہنچنے نہیں دے رہے تھے. تو یہ سارا پلان تھا. اور یہ میں پھر وہی بات کہوں گا, یہ جو گروہ تھا یہ اس کی کنٹینیوشن تھی. جنہوں نے یہ بم بلاسٹ کیا ہے یہ انہی کے تانے بانے تھے کہ مزید اس کو آگے بڑھایا جائے اور افراتفری پھیلائی جائے, لوٹ مار پھیلائی جائے.
وسیم صاحب, آپ اسے
ملک کو نقصان پہنچائے گا.
آپ اسے اتفاق نہیں کریں گے کہ کسی نہ کسی کو ذمہ داری قبول کر کے یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. دیکھیں, جو گروپ جتنا منظم ہوگا,
بالکل کرنی چاہیے.
دیکھیں, جتنا منظم ہوگا اتنا متحرک ہوگا, جتنا متحرک ہوگا اتنا ہی ظاہر سے بات کریں. جو ڈپٹی اسپیکر ہیں سندھ اسمبلی, ہم سے پہلے بھی اس پروگرام میں شریک ہیں, وسیم اختر صاحب بھی موجود ہیں, عتیق میر صاحب بھی. شاہ صاحب, میں نے کل آئی جی سندھ سے یہ پوچھا اپنے پروگرام میں کہ کیا وہ اس سے بہتر انتظامات کر سکتے تھے, تو انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ان کا نہیں خیال کہ وہ اس سے بہتر انتظامات کر سکتے تھے.
میں جب پہ بات کرنا چاہوں گی,
جی بالکل, لیٹ می جسٹ کمپلیٹ مائی کوسچن. ساتھ ہی میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے بھی پوچھا اس کل پروگرام کے اندر کہ جناب, آپ کے خیال میں پولیس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا, انہوں نے کہا جی پولیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ تو ہوم منسٹر جانے اور چیف منسٹر جانے. اب آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ریپرزینٹیو ہیں, وسیم اختر صاحب بھی کہہ رہے ہیں یہ منظم تھے, آئی جی کہہ رہا ہے میں کچھ کر نہیں سکتا, مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں پولیس.
میں بات کرتی ہوں,
ہو از ریسپانسیبل؟
جی دیکھیے, میں بات کرتی ہوں. हमने इतनी पुलिस की तादाद बढ़ाई और 10,000 पुलिस थी यहाँ पे मौजूद, जिसमें 5,000 रेंजर थे, फिर इसके अलावा हुसैनी स्काउट भी तकरीबन 5,000 है, भूतराज स्काउट भी है, फिर और भी जहाँ यंग बॉयज स्काउट जहाँ पे धमाका हुआ उनके भी लोग फिट है, उनके शहीद हुए। तो बात ये है
लेकिन गैर मौसर थे ना शाला साहब, गैर मौसर थे, 10,000 थे तो क्या हुआ, गैर मौसर थे फॉर फोर आवर्स दे वर नो
गवर्नमेंट की नहीं है। आप मुझे बताइए अमेरिका जैसे मुल्क में 9/11 हो जाता है, तो यहाँ पे तो आपका मुल्क हालत है जंग में।
मुझे गलत ना समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि दहशत गर्द को रोकना था, मैं ये कह रहा हूँ जो आफ्टर मार्थ के अंदर मुनज्जम लोग आरसन कर रहे थे वहां पर 10,000 पुलिस क्या कर रही थी।
जी वहां पे नहीं कर रहे थे, मैं पहले आप लोगों की ये बात मैं बिल्कुल सही कर दूं कि जब वहां पे ब्लास्ट हुआ है और जैसे ही पहला होश आया है सबको, उन्होंने वहां पे ऐलान किया है कि आजादारा ने हुसैन अपनी जिम्मेदारी को निमटाएंगे और जो अलम और जो ताजिए वो लेके चल रहे हैं वो उसी तरह मंजिल तक पहुंचाएंगे, सिर्फ आप रास्ता दीजिए कि एम्बुलेंस यहाँ पे आ सके। और वहां पे एक अलम झुकने नहीं दिया लोगों ने और वो उसी तरह जुलूस को लेके चले हैं, वहां पे फायरिंग हुई लेकिन लोग नहीं हिले, वो उनका कोई ताल्लुक नहीं है दहशतगर्दी से। दूसरे लोग जो के अतराफ में थे वो अपने अपने इलाकों से निकल के आए जहाँ छुपे बैठे हुए थे वो, और उन्होंने किया है आजादारा ने हुसैन वहां पे कोई भट्टी का तेल और पेट्रोल और माचिस लेके नहीं आए हुए थे कि वो निकले और उन्होंने रिएक्शन दिया, नो कोई रिएक्शन नहीं दिया। और पुलिस की ड्यूटी ये थी कि वो आजादारा ने हुसैन को प्रोटेक्शन दे, पुलिस वहां से नहीं हट सकती थी, रेंजर्स वहां से नहीं हट सकती थी, वरना वहां पे दूसरा ब्लास्ट भी हो सकता था, लाखों का मजमा होता है।
जो अभी मीर साहब जिस लेवल पे बात कर रहे हैं ये एक बड़ी उदास करने वाली और दिलसोज किस्म की स्टेटमेंट है। मामला ये है कि जब हम आपसे पूछते हैं बहसीत नुमाइंदा एमक्यूएम तो आप हमें बताते हैं कि जी ये लोग मौजूद हैं, मुनज्जम हैं। शैला साहबा से मैं पूछता हूं तो वो कहती हैं कि होम मिनिस्टर साहब ने अच्छे इंतजाम किए थे, कम से कम दूसरा दहशतगर्दी का वाकया जो पोटेंशियली हो सकता है उसको प्रिवेंट किया, लेकिन इतना बड़ा नुकसान हुआ उसके ऊपर जवाब कभी नहीं मिलता, दौरे बिल्कुल हो जाते हैं। व्हाट डज इट टेल यू अबाउट द सिस्टम? हम तो बड़ी बात करते हैं कि बड़ी एफिशिएंट सिस्टम है हमारे पास और कराची तो दुनिया के बेहतरीन मुनज्जम तरीन शहरों में से एक है। अनफॉर्चुनेटली जो कल स्टेटमेंट गया और जो इस वक्त स्टेटमेंट जा रहा होगा वो टैली नहीं करता इस बयान के साथ।
देखें जहां तक सिक्योरिटी लैप्स की हम बात करते हैं, देखें धमाका तो हो गया उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है, सुसाइड अटैक्स बड़े मुश्किल से रोके जाते हैं और उस पर भी एक रेंजर्स के जवान ने जान दी है उसको रोका है, अगर वो अंदर आके फटता तो खुदा ना खास्ता और ज्यादा नुकसान होता। हम कहीं नहीं कह रहे कि ये आजादार हुसैन खुदा ना खास्ता इन तखरीबकारियों में इन्वॉल्व थे, सवाल ही पैदा नहीं होता, उनका कोई हाथ नहीं है, ये मुनज्जम ग्रोह हैं जो लूटमार कर रहे थे, इन्होंने माजी में भी किया है, 27 के बाद ये कराची पूरे सिंध में लूटमार हुई है, कत्लो गारत हुई है, ये वही ग्रोह हैं जो लूटमार कर रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है लैप्स, जब मैं कह रहा हूं मैं खामखाई में किसी पर इल्जाम नहीं धरना चाह रहा, मुझे पता है पुलिस का क्या हाल है यहाँ इस सूबे में खासतौर पर, कितनी नफरी है, स्ट्रेंथ भी पूरी नहीं है, मगर जब ब्लास्ट हो चुका उसके बाद जो पुलिस और रेंजर्स मौजूद थी वहां उसको कम से कम इस एलिमेंट को जरूर देखना चाहिए था कि ये लूटमार कर रहा है। जब आप जिम्मेदारी सिटी गवर्नमेंट पे डालते हो, अगर सपोज जैसे फायर ब्रिगेड का मामला आया, अगर आप ये जो रिएक्शन था, पुलिस जो है वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती, पुलिस सूबा हुकूमत जो सूबे की है उसके पास है, अब जाहिर है एक बहुत बड़ा धचका लगा है, अब पुलिस के महकमे को चाहिए कि ऐसे मेजर्स ले कि इस किस्म के रिएक्शंस को प्रिवेंट कर सके। हमारी जो पार्टी है वो ऑलरेडी ग्राउंड पे है, हमारे जो सेक्टर यूनिट्स हैं वो ग्राउंड पे हैं, मगर उस वक्त जो गलियों से लोग निकल के जिन्होंने लूटमार की है हम जाहिर है उसको उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते, मगर हम पिन पॉइंट जरूर कर सकते हैं, इस पे इंक्वायरियां हो रही हैं, हम पार्टी लेवल पे भी इंक्वायरी हमारी चल रही है कि ये कौन से ग्रोह हो सकते हैं और हुकूमत भी इस पे काम कर रही है, इंशाल्लाह ये सामने जरूर आएंगे तलत।
नाज़रीन प्रेसिडेंट अलायंस मार्केट एसोसिएशन वसीम अख्तर साहब MNMQM और शैला रजा साहिबा डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली, हम तीनों को बहुत मशकूर हैं, उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत की। नाज़रीन अतीक साहब ने एक बड़ा जुमला कहा और जिसके अंदर बड़ा विजडम है कि जो और हकीकत का बयान भी है कि जो कल के कारोबार के बादशाह थे आज फकीर हो गए, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके बारे में अगर खुदा न खास्ता ये परसेप्शन बन गया कि ये वो बादशाह हैं جو ہمیشہ بادشاہوں کی طرح رہتے ہیں اور فقرا کے ساتھ صحیح طریقے سے ان کی داد رسی بھی نہیں کر پاتے، ان کو تحفظ بھی نہیں دے پاتے، تو شاید یہ بادشاہ بھی بادشاہ نہ رہیں۔ یہ وقت ہے ہمیں سیریسلی ریفلیکٹ کرنے کا کہ جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اگر کوئی تنظیم اس کے اندر موجود ہے، اگر کوئی گروپس موجود ہیں اور وہ اتنے منظم ہیں کہ تاک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کام کر گزرے جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، تو پھر یہ اگر فیلئر نہیں ہے تو آئی ڈونٹ نو واٹ فیلئر از۔ طلعت حسین کی طرف سے یہی کچھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔